તારીખ 5/9/1995 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 502
ચંદ્ર વચનામૃત પત્ર 569 ये पत्र स्वविचार बल बढ़ने के लिए लिखा गया है। पत्र के अंतिम भाग में ये वाक्य लिखा गया है कि स्वविचार बल बढ़ने के लिए मैंने अपना आत्मविचार के बल बढ़ने के लिए ये पत्र लिखा है। वो पत्र का विषय क्या है कि प्रायः मुमुक्षुओं को यह शिकायत रहती है कि हमारा विचार बल है वो चलता नहीं, विचार आता है लेकिन बल नहीं चलता। विचार होना एक बात है और उसका बलवानपना होना वो दूसरी बात है। तो उस विषय में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण इस पत्र में आया है। श्री सत्पुरुषों को नमस्कार। प्रारंभ में ज्ञानी पुरुष को, ज्ञानी पुरुषों को नमस्कार किए हैं। तीनों काल के सत्पुरुष हैं, उनके प्रति अपना विनय और आदर भाव व्यक्त किया है। और प्रारंभ में ही एक सिद्धांत लिया है कि सर्व क्लेश से और सर्व दुख से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। सभी जीव सर्व दुख से और सर्व क्लेश से रहित होना चाहते हैं लेकिन इसका उपाय कोई नहीं जानते। आप किसी भी को पूछो कि आपको कौन सा क्लेश और कौन सा दुख चाहिए, कोई हाँ नहीं भरेगा कि हमको कोई दुख नहीं चाहिए, कोई क्लेश नहीं चाहिए, लेकिन इसका उपाय नहीं जानते हैं तो वो क्लेश और दुख को भोगना पड़ता है। जबकि वितराग मार्ग में ये बात बहुत प्रसिद्ध है, ये सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है कि सर्व क्लेश से और सर्व दुख से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। और नियम से मैंने कि रामबाण उपाय है, इससे सर्व दुख और सर्व क्लेश मिटे ही मिटे, नहीं मिटे ऐसा नहीं बने। अगर कोई ऐसा उपाय हो आत्मज्ञान जैसा कि जिस कारण से जीव संसार के सर्व दुख से और सर्व क्लेश से रहित हो सकता है, मुक्त हो सकता है, तो उसका मूल्य कितना। आज हमको थोड़ी भी पीड़ा या रोग कुछ भी हो दूर करने को जाते हैं तो उसका कॉस्ट लगता है कि नहीं लगता है। भूख का दुख मिटाने का कॉस्ट लगता है कि नहीं लगता है, प्रतिकूलता का दुख मिटाने का सबका लगता है कि नहीं लगता है। तो सर्व दुख से मिटे, सर्व क्लेश से मिटे, इसका मूल्य कितना। आत्मज्ञान है उसका मूल्य। कोई भी परिस्थिति में किसी पदार्थ से कर सके ऐसी बात नहीं है। ऐसा आत्मज्ञान कैसे हुए, ये प्रश्न उठ सकता है कि जब सर्व दुख और सर्व क्लेश आत्मज्ञान से मिटता ही है, नियम से मिटता है, तो आत्मज्ञान कैसे हो, ये प्रश्न सीधा खड़ा होता है। उसका उत्तर देंगे कि विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। विचार मैंने कौन सा विचार, ऐसा कौन सा विचार है कि जिस विचार से आत्मज्ञान होता है। आत्मकल्याण का विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। जिसका विचार मैंने अभिप्राय, ना विचार मैंने अभिप्राय, जिसका अभिप्राय आत्मकल्याण करने का हो, उसको ही आत्मज्ञान होता है। जिसका अभिप्राय आत्मकल्याण का नहीं है, उसको आत्मज्ञान नहीं होता। आप कहेंगे कि फिर मंदिर क्यों आते हैं, स्वाध्याय करने को क्यों आते हैं, या धर्म कार्य क्यों लोग क्यों करते हैं। कि कई लोगों को आत्मकल्याण की दरकार नहीं है, कोई पुण्य की वांछा करते हैं, कोई अपने कोई भी प्रकार के संसार की समस्या है उसको दूर करने की वांछा करते हैं, ऐसे पुण्य के फल की वांछा करते हैं या पुण्य की वांछा करते हैं, उनको कभी आत्मज्ञान नहीं होता। अथवा एकमात्र आत्मकल्याण का विचार हो, एकमात्र आत्मकल्याण का अभिप्राय हो, उसको आत्मज्ञान होता है। ऐसा नहीं होता तो आत्मज्ञान नहीं होता। तो जैसे आत्मकल्याण भी करना है और संसार में सभी अनुकूलता भी हमें प्राप्त करनी है, दोनों प्राप्त करना है, आत्मज्ञान भी प्राप्त करना है और संसार भी प्राप्त करना है, तो आज आया सुबह कि एक म्यान में दो तरवार नहीं रहते, ये बात है। इसलिए आत्महित के विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। ये बात यहां से निकालनी चाहिए। विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होता ऐसा पढ़ ले, पर किस प्रकार का विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होता वो समझ में नहीं आए तो वो पढ़ना समझदारी का बात नहीं रहेगा। ऐसे ही पढ़ लिया। और असत्संग तथा असत प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवृत्त नहीं होता, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। अब क्या कहते हैं कि अभिप्राय में तो कईयों को ऐसा होता है कि आत्मकल्याण के लिए हम स्वाध्याय सत्संग आदि सब कुछ करें, लेकिन ऐसा जो विचार है जिसको आत्मविचार कहते हैं, आत्मविचार कहो या आत्मकल्याण के विचार कहो, वो होता है फिर भी उसका बल नहीं होता। विचार होना एक बात है और विचार बल होना एक दूसरी बात है। विचार बहुतों को होता है, विचार बल कुछ एक को ही होता है, ऐसा बनता है। तो इसका क्या कारण, विचार तो है, ये बहुत लोगों की शिकायत है कि क्या करें, हमारा भाव तो है आत्मकल्याण करने का, लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता, हमारा बल नहीं चलता, हम निर्बल, अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, इसका क्या करें, ये समस्या है। इसका उत्तर दर दिया है कि इसका कारण वो है कि असत्संग या असत प्रसंग, वो बात जीव को रही है। ये दोनों कारण ऐसा है कि जीव को विचार होने पर भी विचार बल प्रवृत्त में उत्पन्न नहीं होता। और सत्संग किसको कहे कि सत्संग को छोड़ करके सत्संग के सिवा जितना भी संघ है वो असत्संग है। सत्संग को छोड़ करके और संघ करने लायक नहीं है, चाहे वो संघ अपने कुटुंब परिवार का हो या चाहे ये संघ मित्र या सगे संबंधी का हो या कोई भी बाजार में व्यापारियों का हो या कहीं भी ऑफिस में साथ में काम करने वाले का हो, किसी का भी हो, जो भी सत्संग के सिवा संघ है वो असत्संग है। स्थूल असत्संग है। अब थोड़ा सूक्ष्म असत्संग की बात करेंगे कि यथार्थ सत्संग के बिना मुमुक्षु जो अयथार्थ मार्ग में या अयथार्थ प्रवृत्ति में या अयथार्थ लाइन में है उसका संग करेंगे तो भी असत्संग है। एक तो कहलाने वाले जो मुमुक्षु है, नाम मात्र, मुमुक्षुता नहीं है जिसमें, उनका तो संग करना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग साथ में बैठते हैं उसमें भी अपने परिणाम में सत का रंग चढ़े ऐसी बात होनी चाहिए, जिसका संग करने से आत्मरुचि का पोषण होवे, पुष्टि होवे, आत्मरस चढ़े, उनका संग करना चाहिए, दूसरे का संग करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत स्पष्ट बात कर लें कि शास्त्र या परमागम लेकर के 5-10 आदमी बैठ जाए उसमें हम भी बैठ जाए इसलिए सत्संग हो गया, ऐसा नहीं है, नहीं है। बहुत सावधानी से गंभीरता से इस मार्ग में आगे बढ़ना है या चलना है। उपेक्षा से, बेदरकारी से, असावधानी से चलना नहीं चाहिए, बहुत कीमती चीज है। धर्म प्राप्त करना यानी आत्मज्ञान प्राप्त करना ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत कीमती चीज है। क्यों बहुत कीमती चीज है कि सर्व दुख से और सर्व क्लेश से मुक्त कराता है वो। ऐसी चीज कहां मिलती है संसार में, जगत में कहां मिलती है, विश्व में कोई ऐसी चीज है क्या कि सर्व दुख से सर्व क्लेश से मुक्त करा दे। और सबसे बड़ा दुख तो मृत्यु का है जीव को, किसका है, मृत्यु का, मृत्यु का भय है और उसका दुख भी है। किसी को मरना है क्या,
नहीं।
90 साल के बूढ़े को पूछ लो, वृद्धावस्था वाले को, कि आपको कब मरना है, तो बोले कि कोई बात करने का दबंग होता है होना चाहिए, ऐसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्या बात करते हो, मरने की बात करते हो, खुद को किसी को मरना है ही नहीं। इतना दुखदायक प्रसंग है कि इसकी बात करना या बात सुनना नहीं चाहेगा मनुष्य, इसकी बात सुनना भी नहीं चाहेगा, करना भी नहीं चाहेगा, तो मरना तो कहां से चाहेगा। ऐसे सर्व प्रकार से दुख को मुक्त कराने वाला आत्मज्ञान, इसका मूल्य कितना, और उसको प्राप्त करने के लिए गंभीरता और सावधानी कितनी होनी चाहिए कि कहीं भी असत्संग में हम नहीं आ जाएं, वरना इन्फेक्शन लग जाएगा। जैसे कमजोर मनुष्य को जिसकी वाइटालिटी लो होती है, जिसका रेजिस्टेंस पावर बहुत कमजोर होता है, उसको इन्फेक्शन लगने में देर नहीं लगती, ऐसे तभी भी विज्ञान में, शरीर विज्ञान में ऐसा होता है, मेडिकल साइंस में ऐसा इधर समझ लेना कि असत्संग में गया कि इन्फेक्शन लग जाएगा, ऐसी बात है। क्योंकि मुमुक्षु तो कमजोर है, इसलिए असत्संग नहीं हो उसका ख्याल करना, बहुत सावधानी से सत्संग में जाना या रहना। और असत प्रसंग आत्मकल्याण के हेतुभूत जो प्रसंग है वो सत प्रसंग है, और उसके सिवा सब असत प्रसंग है। इसलिए संसार के व्यवहार के सभी प्रसंग असत प्रसंग है, और धार्मिक परंपरा में जो मूल परंपरा में विकृति आई वो भी नहीं, मूल परंपरा में जो भी प्रसंग है, जो भी व्यवहार है, वो परमार्थ हेतुभूत जो व्यवहार है वही सत्प्रसंग है। जो सत्संग है, भगवान की पूजा वगैरह है, स्वाध्याय है, वो सब सत्प्रसंग है, इसके सिवा सब असत प्रसंग है। अब क्या करना, संसार में रहना है तो व्यवहार में तो रहना पड़ता है, और सभी सगे संबंधी से व्यवहार अपना संबंध भी मेंटेन करना पड़ता है, इसका क्या करें। कि जिसको लौकिक इज्जत रखनी हो या जमानी हो उनको तो ऐसा करना पड़ता है, लेकिन जिसको अपना आत्मकल्याण करना है उसको बात के दरकार करने की कोई जरूरत नहीं लगती। सामान्य मुमुक्षु को सूक्ष्म प्रकार का असत्संग और सत्संग का भेद कैसे पाड़ना है, अजीत भाई का प्रश्न है। अपने परिण मन से क्या, कि हमको सत्कार रंग चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है वो देख लेना, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, वो कैसा है वो कैसा है वो कैसा है वो देखने की इतनी जरूरत नहीं है। पर वो देखने जाओगे तो भी सामान्य मुमुक्षु को उतना परीक्षा बल तो होता नहीं है, तो क्या करें, वो तो भूल हो जाएगा उस पद्धति में, तो इस पद्धति में तो भूल हो जाएगा। तो सामान्य मुमुक्षु को भी सत्कार आत्मरस आत्मा का तो रंग चढ़ना चाहिए कि नहीं। हाँ, अपने परिणामन को देख लेना कि हमारी आत्मरुचि को पोषण मिलता है कि नहीं, पुष्टि होती है कि नहीं होती है रुचि की, वो देख लेना, उसे पता चल जाएगा, ये बात है। ठीक है, प्रश्न तो बराबर है, प्रश्न तो अपने स्थान में बराबर है कि क्या करना। क्या कहा, असत असत्संग तथा असत प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवृत्त नहीं होता, विचार होता है और विचार बल काम नहीं करता, इसका कारण कि कहीं असत्संग का सेवन होता है और असत प्रसंग में हम रस लेते हैं, ये हमारा रस हमारे विचार बल को उत्पन्न होने देता नहीं। अब प्रश्न उठेगा कि असत प्रसंग का बल कैसे घटे और असत्संग का बल भी कैसे घटे, ये प्रश्न उठेगा, इसका उत्तर देते हैं। ये पत्र में बहुत अच्छी बात है कि जहाँ जो बात वो स्थापित करते हैं उसके विषय में प्रश्न अवश्य उठेगा, वो कैसे हो, और ठीक इसके पीछे उसी का उत्तर देते हैं वो। एक प्रश्न नहीं उठाया उतनी सी बात है, बाकी तो प्रश्न हमारा बराबर वहाँ उठ सकता है, उठेगा भी, और उसका उत्तर भी यहां मिलता है। मैंने लिखने वाले की निपुणता, कुशलता, विचक्षणता बहुत है। वो जानते हैं कि यहाँ कौन सी समस्या चल उठ सकती है। कहते हैं आरंभ परिग्रह की अल्पता करने से असत प्रसंग का बल घटता है। जिसको आत्मकल्याण करने का विचार है, जिसको आत्मविचार कहते हैं, जिसको आत्मविचार रहता है, उनको अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का विचार आए बिना नहीं रहेगा। उनको आरंभ परिग्रह बढ़ाने का भाव नहीं आएगा। उनकी सामान्य बुद्धि में भी वो बात समझ में आ जाएगी कि मेरा आरंभ परिग्रह बढ़ने से मेरा आत्मविचार कहाँ से चलेगा, मैं तो उसमें पूरा पूरा घुस जाऊंगा, इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो आत्मविचार के लिए, अवकाश प्राप्त होने के लिए अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का विचार आएगा और इससे असत प्रसंग का जो भी प्रकार है वो कम हो जाएगा। और वो बात सभी को अनुभव गोचर है कि जितना आरंभ परिग्रह ज्यादा उतना असत प्रसंग का प्रमाण भी ज्यादा। जिसको अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह है उसका असत प्रसंग का प्रमाण भी अल्प होता है। तो स्वाभाविक समझ में आया ऐसी बात है। इसलिए जिसको आत्मकल्याण का विचार आएगा उसको निवृत्ति का विचार आए बिना नहीं रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम हमारे व्यवसाय आदि से या असत प्रसंगों से निवृत्त हो जाए। एक तकलीफ सामाजिक लोगों को दिमाग में रहती है कि क्या करें, समाज के साथ रहना के है तो क्या करेंगे। समाज, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के साथ रहें, जान पहचान सब बहुत है, आगे की क्या करें। कि वो बात, इज्जत आवरण को जो मुख्य करता है उनको ही सताती है। जिसको लौकिक इज्जत आवरू बढ़ानी है उनको वो बात सताती है। जिसको समाज में अपना स्थान का कोई चिंता नहीं है या कोई बात नहीं है उनको असत प्रसंग के में कोई बात रहेगी ही नहीं। वरना आज इधर जाना है कल उधर जाना है, वो पार्टी शादी मरण वो सब प्रसंग तो पड़ता ही है समाज में जाने का, सब सगे संबंधी में जाने का, वो कम कर देना, हो सके उतना कम करना चाहिए। आरंभ परिग्रह की अल्पता करने से असत प्रसंग का बल घटता है, वो असत प्रसंग का बल घटाने का उपाय बताया है। अब सत्संग के आश्रय से असत्संग का बल घटता है। सत्संग में रहने से या सत्संग करने से ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया है, सत्संग के आश्रय से आधार लेना है उसका। आश्रय माने आधार लेना है कि यही मेरा आत्मकल्याण का एक आधारभूत प्रसंग है। इसलिए सत्संग की जिसको रुचि है, सत्संग में ज्यादा रहना है उनको और सत्संग का बल घट जाएगा। हाँ, उसमें क्या है, वजन जाता है। वरना हम लोग सत्संग करते हैं, स्वाध्याय में जाते हैं, इतना वजन नहीं रहता है इस बात पे। वजन कैसे रहना कि हम हमारा कार्य की महत्ता, महत्व कितनी आंकते हैं, या एक हमारा रूटीन कोर्स हो गया। जैसे हर संप्रदाय में अपने अपने रूढ़ी रिवाज परंपरा अनुसार धार्मिक क्रिया का एक रूटीन होता है, कोई सामायिक का, कोई प्रतिक्रमण का, कोई पूजा का, कोई स्वाध्याय का, कोई भक्ति का, कुछ न कुछ। ऐसा हम सत्संग भी एक रूटीन बना लें, यंत्रवत मैकेनिकली, कि चलो एक घंटा या दो घंटा ऐसे हमको साथ में बैठना है, ऐसा नहीं। उसका महत्व बहुत है, हमारे आत्मकल्याण का उत्कृष्ट उपाय है, परम हेतुभूत है। देखो ये 528 में वो बात लिया है, में हिंदी में पेज नंबर 431 है और गुजराती में 423 आखिर का पैराग्राफ। आत्महित के लिए सत्संग जैसा बलवान अन्य कोई निमित प्रतीत नहीं होता, पहला वचनामृत है, है? आत्महित के लिए बहुत से धर्म के साधन निमित्तभूत है, उसमें सत्संग जैसा बलवान निमित्त अन्य कोई प्रतीत नहीं होता, खातरी नहीं होती, तो उसका मूल्य आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रूटीन में चले जाए, ऐसा नहीं, वो तो कई साल हो गया, तो उसका मूल्य आना चाहिए। और हमने सत्संग किया तो उसका लाभ हमको क्या हुआ, वो भी चेक करना चाहिए। और जहां ऐसा चेकिंग होता है वहां सत्संग करना ठीक, कि क्या लाभ हुआ। हम 4-6 महीने पहले भी सत्संग में आते थे, अभी भी आते हैं, क्या फायदा हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जांच तलाश बराबर होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो वैसे ही उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, चलो कर लिया सत्संग, हो गया सत्संग, ऐसा नहीं चलता। इसलिए सत्संग के आश्रय से ऐसा शब्द लिया है। ये जो कृपालु दिन के वचनामृत हैं, उसमें एक एक शब्द में बहुत उपयोग से लिखा हुआ बात है, अनुपयोग से नहीं लिखा है। जैसे गुरुदेव प्रवचन करते थे तो हमको बराबर मालूम है, एक एक बात बहुत उपयोग से चलते थे, जो बात वो फरमाते थे उनमें बहुत उपयोग से बातें चलते थे। ऐसा नहीं है कि उनको शास्त्र की बहुत जानकारी थी इसलिए कर देते थे, बहुत उपयोग से उपदेश चलता था। ऐसे वहां इधर भी एक एक वचन लिखे हैं, बहुत उपयोग से लिखा है। सत्संग के आश्रय से बल घटता है असत्संग का, ऐसा सत्संग करने से असत्संग का बल नहीं घटता है। और इसका सबूत है कि इस प्रकार से जो सत्संग का आश्रय नहीं करता लेकिन सत्संग करता है, क्या सत्संग करता है लेकिन सत्संग का आश्रय नहीं करता है, वो तो क्या करता है कि बार में असत प्रसंग का बल उसका कोई घटता नहीं, ऐसा क्या वैसा रह जाता है, क्या करे। व्यवहार तो व्यवहार के स्थान में होना ही चाहिए, वो तो सब करना ही चाहिए, इसके बिना कैसे चलता। व्यवहार निभाएंगे नहीं तो व्यवहार चलेगा कहां से, हमारा व्यवहार कहां से चलेगा। या इससे ज्यादा बहुत जो ठोस आर्ग्यूमेंट आती है वो इस प्रकार से आती है कि अगर हम किसी के यहां नहीं जाएंगे असत प्रसंग गिन करके तो हमारे यहां कौन आएंगे। आपका टाइम बिगड़ेगा और वो आएंगे तो भी आपका टाइम बिगड़ेगा, दोनों में बिगड़ने वाला है, क्या फायदा है इससे आने जाने में। हाँ, इसलिए अल्प परिचय होना आता है, अल्पहासी अल्पभाषी अल्प परिचय है,
103
देखो कितना बोल लिया है, शिक्षा तो बहुत दिया है। हाँ इसमें 212 है, हिंदी में 212 आखिर में है, इसलिए वहां अल्प भाषी होना, मैंने ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा बोल बोल करना वो भी अच्छा
नहीं है,
नहीं है। अल्प हासी होना, ज्यादा हंसना भी नहीं। अल्प भाषी अल्प हासी अल्प परिचय होना, ये आने जाने का परिचय ज्यादा बढ़ाने लायक
नहीं है,
नहीं है। तो हमारे तो सारे गांव के साथ बहुत संबंध है, इसका गर्व लेते हैं लोग, क्या इधर से भी संबंध है, उन लोगों से भी संबंध है, अरे कोई भी काम हो हमारा निकल जाता है, संबंध बहुत है ना।
हाँ
ये परिभ्रमण करने का रास्ता है सब, यहाँ तो परिभ्रमण से छूटने की बात है, अल्प परिचय होना, परिचय कम कर देना, हो तो भी
कम
कर देना, अल्प सत्कारी होना, ज्यादा को बुलाओ हमारे यहाँ, बुलाओ आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ आप, हमारे यहाँ आओ, उसमें भी कोई मजा
नहीं है,
नहीं है। अल्प सत्कारी होना, देखो जाना भी नहीं और आने के लिए सत्कार ज्यादा भी करना आवकार देना है, ज्यादा आवकार नहीं देना है, बुलाते हैं आवकार, मैंने बुलाते हैं गुजराती में जो आवकार है, आप हमारे यहाँ आना, आप आते नहीं हमारे यहाँ, कितने टाइम से नहीं आए, आप तो आते ही नहीं हमारे यहाँ, अब क्या बुला के करना है तुमको, सारे दुनिया की पंचायत करना के सिवा क्या होता है। ऐसे जो धार्मिक जन नहीं है, व्यवहारिक जन है, उनको घर बुलाते हो तो पंचायत के सिवा क्या होने वाला है इसमें, है इधर उधर की पंचायत हो जाएगी और समय बिगड़ेगा। और अल्प भावना बताना, ज्यादा भावना नहीं बताना है, और भावना मैंने कि आपके प्रति हमको बहुत सम्मान है, ऐसा है वैसा है, आपको तो आना ही चाहिए, आप क्यों नहीं आते, हाँ लागनी, ज्यादा ज्यादा लगाव, सत्संग के अलावा ज्यादा लगाव रखना
नहीं,
वो मतलब है। पर अल्प सहचारी होना, मित्राचारी जो होती है सत्संग के सिवा, वो भी अल्प कर देना, कम कर देना। अल्प गुरु होना, हर जगह उपदेश देना नहीं, क्या होता है कि समझ तो होती है थोड़ी, अधूरा छलका है, उपदेश देने लग जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, ये गुरु गुरु बन जाता है, गुरु बनना
नहीं,
क्योंकि अपने को तो ग्रहण करने का बहुत बाकी है, इसलिए गुरु बनने की कोई जरूरत
नहीं
है। कितना बोल लिया है, और परिणाम का विचार करना, परिणाम का विचार करना, हमारे परिणाम कैसे चलते हैं, यही श्रेयस्कर है। काजल की कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में रहने से संसार बढ़ता है, संसार बढ़ाना हो उसको करना, जिसको संसार तोड़ना है घटाना है मुक्त होना है परिभ्रमण से दुख से सर्व क्लेश से सर्व दुख से मुक्त होना हो, उनके लिए तो ये शिक्षा है। एकांतवास में जितना संसार क्षय होने वाला है उसका सोमा हिस्सा भी उस काजल ग्रह में रहने से नहीं होने वाला है। हाँ एकांतवास का मतलब वो है कि ज्यादा संबंध नहीं बढ़ाना, वहाँ उतना ही लेना है, ज्यादा लगाव किसी से नहीं रखना, इतना जितना हो उतना अकेलापन करना। और अकेलापन में सत्संग को छोड़ना वो बात नहीं है, सत्संग है वो भी एकांतवास है, मुमुक्ष को सत्संग है वो भी एकांतवास है, एक अभिप्राय वाले के साथ वास करना वो एकांतवास है, वो यहाँ इधर लेना, यहाँ एकांतवास का उतना मर्यादा लेना। बाकी जो ज्ञानी है ध्यानी है वो एकांत में रहते हैं, वो बात अलग हो जाती है, वो मुमुक्ष को लागू नहीं पड़ते, या मुमुक्ष को ऐसा एकांत नहीं करना है कि चलो रूम कमरा बंद करके बैठ जाए ध्यान में, इसका मुमुक्ष की भूमिका का काम नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि असत्संग का बल घटने से आत्मविचार होने का अवकाश प्राप्त होता है, और आत्मविचार होने से आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान होने से निस्वभाव स्वरूप सर्व क्लेश एवं सर्व दुख से रहित मोक्ष प्राप्त होता है। यह बात सर्वथा सत्य है, उसमें संशय करने जैसी बात नहीं है। इस थोड़े वचन पर विशेष विचार करेंगे कल के स्वाध्याय में।